फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त। फिलिपियों बाब एक। यीशु मसीह का खादिम पौलुस और तिमोथियुस ये ख़त लिख रहा है, खुदा के तमाम मुक़दस लोगों के नाम जो मसीह यीशु में यकीन रखते हैं, जो फिलिपी में, और तमाम बुज़ुर्गों और ख़ास मददगारों के साथ रहते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और सलामती तुम पर हो। मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। मैं हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारे लिए खुशी से दुआ करता हूँ। जब मैंने लोगों को खुशखबरी सुनाई उस वक्त तूने मेरी मदद की, उसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तुम जब से ईमान लाए तब से लेकर आज तक तुमने मेरी मदद की। खुदा ने तुम्हारे बीच नेक सलूक शुरू किया और वह उस काम को उस वक्त मुकम्मल करेगा जबकि यीशु मसीह फिर आकर उसे पूरा करेंगे, और मुझे उसका यकीन है। तुम सब के बारे में मेरे लिए इस तरह सोचना सही है क्योंकि तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूँ। तुम सब मेरे साथ खुदा के फ़ज़ल में शरीक हो। तुम फ़ज़ल में मेरे साथ उस वक्त भी शरीक थे जबकि मैं क़ैद में था, और खुशखबरी के जवाब देह और सबूत में तुम मेरे साथ हो। खुदा बाप जानता है कि मैं तुमको देखने की कितनी ख्वाहिश रखता हूँ। मैं मसीह यीशु की मोहब्बत से तुम सबको मोहब्बत करता हूँ। मेरी ये दुआ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए बढ़ेगी, हर चीज़ में तुम्हारा इल्म और समझ मेरे लिए बढ़े, और तुम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सको और फिर अच्छाई को इख्तियार करो, ताकि तुम मसीह के आने के दिन तक पाक और बेऐब रहो, और तुम बहुत सारे अच्छे काम यीशु मसीह की मदद से करो ताकि खुदा का जलाल और तारीफ़ मिले। भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें उन तकलीफ़ों के मुतालिक बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ पेश आईं, जो खुशखबरी फैलाने में मददगार हुई। ये बात साफ़ है कि मैं क़ैद में क्यों हूँ, क्योंकि मैं मसीह में ईमान रखता हूँ, और शहंशाह के सारे पहरेदार और दूसरे लोग ये जानते हैं मैं क़ैद में हूँ। लेकिन ईमान वालों की हिम्मत ज़्यादा बंधती है, वो बग़ैर किसी खौफ के मसीह के पैगाम में हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग मसीह के लिए तबलीग करते हैं क्योंकि वो हसद और झगड़ा करते हैं, जबकि दूसरे लोग नेक नियत से मसीह की मुनादी देते हैं। ये लोग मुनादी इसलिए देते हैं कि यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। वो जानते हैं कि खुदा ने खुशखबरी के कामों के जवाबदेही करने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, लेकिन वो दूसरे लोग हैं जो मसीह की तबलीग करते हैं, वो खुद गर्जी से करते हैं, उनका इरादा ही गलत है, और वह मुझे क़ैद में भी तकलीफ़ें देने का सबब बनेंगे। अगर वह मुझे तकलीफ़ें देते हैं तो मैं उनकी परवाह नहीं करता। अहम चीज़ ये है कि वह लोगों से मसीह के मुतालिक कहते हैं। मुझे खुशी है कि वह लोग मसीह के मुतालिक कहें, ख्वाह किसी सबब से हो, या सच्चाई से हो, या झूठे बयानों से हो, वह लोगों को मसीह के मुतालिक कहते हैं। इस तरह मेरी खुशी जारी रहेगी तुम्हारी दुआओं के ज़रिए से, और यीशु मसीह की रूह की मदद से मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी की राह तक ले जाएगी। ये मेरी उम्मीद है और यकीन कामिल है कि मैं अपने किसी भी तबलीगी मकसद में नाकाम नहीं होऊंगा। मैं हमेशा की तरह ज़मीन पर मसीह की आज़मत को बताता रहूँगा, चाहे उसके लिए मरूँ या ज़िंदा रहूँ, क्योंकि ज़िंदा रहने का मतलब है ज़िंदगी मसीह के लिए है, और उसमें मौत भी मेरे लिए नफ़ादेह है। अगर जिस्मानी तौर से ज़िंदा रहता हूँ तब मैं खुदावंद के लिए काम करने के काबिल हूँ, लेकिन मैं किस चीज़ को अपनाऊँ, ज़िंदगी को या मौत को, मैं नहीं जानता। मेरे लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल है। मैं उस ज़िंदगी को छोड़कर मसीह के साथ होना चाहता हूँ, और यही मेरे लिए बेहतर है। लेकिन तुम लोग यहाँ जिस्मानी तौर से मेरी ज़्यादा ज़रूरत समझते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ठहरूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम अपने ईमान और खुशियों में आगे बढ़ सको। तुम लोग मसीह यीशु में बहुत खुश होगे। جب دوبارہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن اس بات کا یقین کر لو کہ تمہاری زندگی کے راستے مسیح کی خوشخبری کے مطابق عمدہ ہونا چاہیے۔ اگر میں تمہارے پاس آ کر تم سے ملوں یا تم سے دور رہوں، میں تمہارے متعلق اچھی باتیں سننا پسند کروں گا۔ میں سننا چاہوں گا کہ تم متفقہ مقصد کے لیے مضبوط کھڑے ہو اور ہر ممکن کوششوں سے ایمان کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہو جو خوشخبری میں ہے، اور تم کو کسی بھی حال میں نہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں سے جو تمہارے مخالف ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں خدا کی طرف سے کہ تمہاری نجات ہے اور ہلاکت ان کے انتظار میں ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں مسیح میں ایمان کی وجہ سے عزت دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیح کے لیے تکلیفیں جھیلنے کے لیے بھی عزت دی۔ جب میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے میری جد و جہد کو دیکھا، اور اب تم سنتے ہو کہ میں نے جد و جہد کی ہے۔ تم خود بھی اس قسم کی جد و جہد میں رہتے ہو۔ فلپیوں باب 2۔ مسیحی میں کوئی اور راہ ہے کہ میں تم سے کرنے کو کہوں؟ کیا تمہاری محبت مجھے آرام پہنچانے کے قابل بناتی ہے؟ کیا ہم اسی روح میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس رحم اور مہربانی ہے؟ اگر تم میں یہ چیزیں ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کچھ کرو، میں خوش ہوں گا۔ تم سوچنے میں ایک رہو اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے سے مل جل کر ایک مقصد کے تحت رہو۔ آپسی اختلافات اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، نرمی سے پیش آؤ اور لوگوں کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ صرف اپنی ہی زندگی سے دلچسپی مت رکھو، بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی دلچسپی رکھو۔ تمہاری زندگیوں اور خیالات میں تم کو چاہیے کہ مسیح یسوع کی طرح رہیں۔ مسیح خود ہر چیز میں خدا کے جیسا تھا۔ مسیح خدا کے مساوی تھے، لیکن مسیح نے کبھی نہیں سوچا کہ خود کو خدا کے ساتھ مل کر اس کی ہر چیز میں برابری کرے، بلکہ اس نے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک خادم کا روپ اختیار کر لیا اور انسان کی مانند بن گیا، اور وہ اپنے خارجی روپ میں انسان جیسا بن گئے۔ وہ صحیح آدمی بن گئے اور اپنے آپ کو حقیر بنا کر خدا کا فرما بردار ہو گیا، موت کو گوارا کر لیا۔ ہاں بالکل، وہ صلیب کی موت حاصل کی، کیونکہ مسیح خدا کے فرما بردار تھے۔ خدا نے بھی اسے اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ خدا نے اس کو مسیح کا نام دیا اور کسی ناموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ خدا نے اسی لیے ایسا کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہر شخص، خواہ آسمانوں کا ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، یسوع کے نام پر جھکیں۔ ہر شخص اقرار کرے گا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ جب وہ کہتے ہیں تو خدا باپ ہمارا جلال ظاہر کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں، فرما بردار رہو۔ جب میں تمہارے ساتھ تھا تو تم خدا کے فرما بردار تھے۔ یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ تم اس وقت بھی فرما بردار رہو جبکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ میری مدد کے بغیر تمہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ تم اپنی نجات کی راہ نکال لوگے۔ یہ تمہیں بہت ہی تعظیم اور خدا کے خوف سے کرنا چاہیے۔ ہاں، خدا تم میں کام کر رہا ہے۔ خدا تم کو ایسے کام کرنے کی خواہش دیتا ہے کہ تم وہ کرو جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ ایسا تمام کام کرنے کے لیے تمہیں طاقت نوازتا ہے۔ ہر چیز بغیر کسی جھگڑے کے اور دل میں ملال کے بغیر کرو، تبھی تم بے قصور اور بغیر کسی گناہ کیے ہوئے خدا کے معصوم بچوں کی طرح ہوگے۔ لیکن تمہارے اعتراف خراب لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں تم کو روشنی کی طرح چمکنا چاہیے۔ تم ان لوگوں کو وہ زندگی کا پیغام پیش کرو جس سے انہیں زندگی مل سکے۔ تب میں اس طرح فخر کروں گا جب مسیح دوبارہ آئے گا، میں مطمئن ہوں گا، کیونکہ میرا کام ضائع نہیں کیا گیا، میں اس دوڑ میں جیت گیا۔ تمہارا ایمان تمہیں خدا کی خدمت میں اپنی زندگی قربان کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو میں تمہارے ایمان کے لیے تمہارے ساتھ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوں، جس کے لیے میں خوش ہوں گا، اور میری خوشی میں تم سب شریک ہوگے، اور تمہیں بھی میرے ساتھ خوش ہونا اور تمہاری خوشیوں میں مجھے بھی شامل کرنا ہوگا۔ میں خداوند یسوع مسیح میں امید رکھتا ہوں کہ تیموتھیوس کو بہت جلد تمہارے پاس بھیجوں، تاکہ مجھے تمہارا خبر و خیریت سن کر اطمینان و سکون حاصل ہو سکے۔ میرے پاس تیموتھیوس جیسا کوئی دوسرا آدمی نہیں، وہ سچائی سے تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ دوسرے لوگ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں یسوع مسیح کے کام سے دلچسپی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تیموتھیوس کس قسم کا آدمی ہے، تم جانتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ خوشخبری دینے میں کام کیا تھا۔ وہ بیٹے کی مانند ہے جو اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے۔ میں اس کو جلد تمہارے پاس بھیجنے کا منصوبہ رکھتا ہوں۔ میں جب یہ جان جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا تو میں اس کو بھیجوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خداوند تمہارے پاس جلد آنے کے لیے میری مدد کرے گا۔ اپفردتس مسیح میں میرا بھائی ہے، وہ میرے ساتھ مسیح کی فوج میں کام اور خدمت کرتا ہے۔ جب مجھے مدد کی ضرورت تھی تو تم نے اسے میرے پاس بھیجا کہ میری ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے تمہارے پاس واپس بھیج دوں۔ میں اس کو بھیجتا ہوں کیونکہ وہ تم سب کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ وہ رنجیدہ ہے کیونکہ تم نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا۔ وہ بہت بیمار تھا اور وہ بھی اتنا کہ جیسے مر ہی جائے گا، لیکن خدا نے میری اور اس کی مدد کی تاکہ وہ مجھے زیادہ دکھ نہ ملے۔ اس لیے میں اس کو تمہارے پاس جلد بھیجنا چاہتا ہوں۔ جب تم اسے دیکھو گے تو تم دوبارہ بہت خوش ہوگے، اور میں تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاؤں گا۔ اس کو خوش آمدید کہو، خداوند کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو، اس کی مانند رہنے والے لوگوں کو عزت دو۔ وہ مسیح کے کام میں تقریباً مر چکا ہے، اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے ہوئی ہو اس کو پورا کرے۔ فلپیوں باب 3۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں دوبارہ یہی بات لکھنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں، اور یہ تمہارے محفوظ رہنے میں مدد دے گا۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو برے کام کرتے ہیں، جو کتوں کی مانند ہیں، وہ جسم کو کٹوانے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو سچے طور پر ختنہ کروائے ہیں۔ ہم خدا کی عبادت اس کی روح کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں۔ ہم کسی فطری چیز پر بھروسہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر مجھے کسی فطری چیز پر بھروسہ بھی ہو تب بھی میں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود پر بھروسہ رکھ سکتا ہے اور اس کا سبب بھی ہو، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس سب سے بڑا سبب خود مجھ میں بھروسہ کا ہے۔ میری پیدائش کے 8 دن بعد میرا ختنہ کروایا گیا۔ میں بنی اسرائیل کے بنیامین خاندان سے ہوں، میں عبرانی ہوں، میرے والدین بھی عبرانی تھے۔ موسیٰ کی شریعت میرے لیے بہت اہم تھی، اسی لیے میں فریسی ہوا۔ میں اپنے یہودی مذہب پر ہونے سے بہت مشتعل تھا کہ میں نے کلیسیا کو ستایا تھا۔ کوئی بھی شخص موسیٰ کی شریعت کی اطاعت پر میری کوئی غلطی نہ پا سکا۔ پہلے یہ چیزیں میرے لیے بہت اہم تھیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی وقعت مسیح کی وجہ سے نہیں رہی۔ صرف وہی چیزیں نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کی وقعت نہیں، اگر مسیح یسوع میرے خداوند کی عظمت کا موازنہ کیا جائے۔ مسیح کی وجہ سے میں وہ تمام چیزیں دے چکا ہوں جسے کبھی میں نے اہم سمجھا تھا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب چیزیں کم مایا ناز ہیں تاکہ میں مسیح کو پا سکوں۔ یہی باتوں نے مجھے مسیح میں رہنے کو ممکن کیا۔ مسیح میں میں خدا سے راست باز ہوا، اور یہ میرا شریعت پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ مسیح پر ایمان لانے سے آئی۔ اس لیے میرے ایمان کی وجہ سے مجھے صحیح بنایا۔ मैं मसीह और उसकी मौत से जी उठने की ताकत के सबब को जानता हूँ। मैं मसीह की मुसीबतों में हिस्सेदार बनकर उसकी मौत जैसा बनना चाहता हूँ। अगर मुझ में वो खसूसियात होते तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मौत से ज़िंदा उठाया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं जैसा कि खुदा ने चाहा हो, मैं अब तक उस मकसद को नहीं पा सका, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि उस तक पहुँच सकूँ। मसीह की ख्वाहिश है मैं वैसा ही करूँ जैसा वो चाहता है, और इसी सबब से उसने मुझे अपना चहिता बना लिया। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि मैं अभी इस मकसद को नहीं पा सका, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, वो ये कि मैं माजी की चीज़ों को भुलाता हूँ। मैं जहाँ तक हो सके उस मकसद को पाने की कोशिश करता हूँ, तमाम कोशिशों को जारी रखा हूँ। मकसद को पाने के लिए और इनाम हासिल करने के लिए, वह इनाम मेरा अपना है, क्योंकि खुदा ने मसीह के ज़रिए मुझे ऊपर बुलाया है। हम जो रूहानी ज़िंदगी में बढ़े हैं मुकम्मल होने के लिए, तो हमें उस रास्ते को भी पहचानना होगा, और अगर उनमें से वही चीज़ तुम उस नज़रिए से नहीं सोचते तो खुदा उसको तुम्हारे लिए वाज़े कर देगा। लेकिन अब हमें सच्चाई पर अमल करने के सिलसिले को जारी रखना होगा। भाइयों और बहनों, तुम सब लोगों को मेरे जैसा रहने की कोशिश करनी होगी, और उन लोगों की पैरवी करनी होगी जिनको हमने उम्दा मिसाल बनाया है। कई लोग मसीह के सलीब के दुश्मनों की तरह रहते हैं। मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में कई मर्तबा कह चुका हूँ, और ये चीज़ उन लोगों के बारे में कहते हुए मुझे रुलाती है। जिस रास्ते को उन लोगों ने चुना है उन्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। वो लोग खुदा की खिदमत नहीं करते, बल्कि उनका पेट ही उनका खुदा है। वो लोग बेशर्मी के कामों पर फख्र महसूस करते हैं। वो सिर्फ दुनिया की चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। हमारी मंजिल आसमान में है, जहां हम अपने नजात दहंदा के आने के मुंतजिर हैं। वो नजात दहंदा मुंजी यानी खुदावंद यीशु मसीह ही है। वो हमारे नाकिस जिस्मों को बदल कर अपने जलाली जिस्म जैसा बना देगा। मसीह ये अपनी ताकत से कर सकते हैं, और उस ताकत के ज़रिए वो हर चीज़ पर हुकूमत करने के अहल हैं। फिलिप्पियों बाब 4। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम मेरी खुशियाँ हो और मुझे तुम पर फख्र होता है। खुदावंद पर मजबूती से कायम रहो, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ। मैं यूदिया और सीयन और तेखी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुदावंद में एक जैसे कौल करार को बनाए रखें। और मैं तुमसे कहता हूँ मेरे वफादार साथियों, तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खिदमत की और खुशखबरी का कलाम सुनाने में अजीम दुख बर्दाश्त की है। उन्होंने कलीम यनस और दूसरों के साथ मिलकर काम किया है। उनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं। हमेशा खुदावंद में खुश रहो। मैं दोबारा कहता हूँ कि खुश रहो। तमाम लोगों को ये देखने दो कि तुम मेहरबान हो। खुदावंद जल्द ही आ रहा है। किसी भी चीज़ के मुतालिक गम न करो, लेकिन खुदा से हमेशा दुआ करके और इल्तिजा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, और जब भी दुआ करो शुक्रिया के साथ करो, और खुदा की सलामती तुम्हारे दिलों और दिमागों को यीशु मसीह में रखे। और जो सलामती खुदा देता है बहुत ही अजीम है, और हमारी समझ में न आने वाली है। भाइयों और बहनों, इन चीज़ों के मुतालिक सोचते रहो जो अच्छे और लायक तारीफ़ है। उन चीज़ों के मुतालिक सोचो जो सच्चाई और इज़्ज़त, रास्ती, पाकबाजी, खूबसूरती और इज़्ज़त के काबिल हैं, और वही चीज़ें करो जो तुमने मुझसे सीखी हैं। वह जो हासिल किया है, जो तुमने मुझसे सुना है, मुझे करते देखा है, और सलामती का खुदा हमारे साथ रहेगा। मैं खुदावंद में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अपनी तवज्जो मेरे लिए दोबारा दिखाई। तुमने उसको मेरे लिए जारी रखा, लेकिन तुम्हें यह दिखाने का मौका न मिला। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं कहता कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, जो कुछ मेरे पास है उससे मैं मुतमईन होता हूँ और जो कुछ होने वाला है उससे भी मुतमईन हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह छोटा रहना है और ये भी जानता हूँ कि अमीरी में किस तरह रहना है। कैसा भी वक्त हो, कोई भी हालात हो, चाहे पेट भरा हुआ हो और चाहे भूखा हो, चाहे पास में बहुत कुछ हो और चाहे कुछ भी ना हो, खुश रहने का राज सीखा है। मैं हर चीज़ मसीह के ज़रिए कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जो तुमने मेरी मदद की जबकि मैं मदद चाहता था। फिलिप्पी लोगों, याद रखो, जब मैंने पहली बार खुदा के कलाम की खुशखबरी दी, जब मैंने मकदुनिया को छोड़ा, कोई भी कलिसिया ऐसी न थी जो लेने और देने में मेरी मदद की हो। कई मर्तबा तुमने मेरी ज़रूरत की चीज़ें रवाना की जब मैं थिस्सलुनीकियों में था। हकीकत में ये मेरा तोहफा नहीं था कि मैं तुमसे बाद में ले लूं, लेकिन मैं होशियार रहना चाहता हूं। तुम में वह नेकियां हों जो किसी को देने से मिलती हैं। मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ है, बल्कि हकीकत में मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे पास है। वह तोहफे इफ्रुतुस के ज़रिए से मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भेजे। तुम्हारे तोहफे नज़र चढ़ाने की मीठी खुशबू जैसी हैं जो खुदा के लिए नज़र करते हैं। इस कुर्बानी को खुदा खुश होकर कबूल करता है। मेरा खुदा बहुत दौलत वाला है। मसीह यीशु के जलाल से वो तुम्हारी ज़रूरतों को अपनी दौलत से पूरा करेगा। हमारे खुदा और बाप का जलाल हमेशा हमेशा के लिए रहे, आमीन। हर एक मुकद्दस लोगों से जो मसीह यीशु में है सलाम कहो। वो खुदा के लोग जो मेरे साथ हैं वो तुमको सलाम कहते हैं। खुदा के तमाम लोग भी तुमको सलाम कहते हैं और तमाम कैसर के महल के अहले ईमान भी सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल तुम सब पर होता रहे, आमीन।